नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के गीतामृत के कार्यक्रम में। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक हमने पिछले बुधवार को लिया था, जहां भगवान अब अर्जुन को बहुत ही व्यावहारिक तौर पर बता रहे हैं कि हमारी जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों में और उनकी श्रृंखला में अंततः एक जीव किस दशा को प्राप्त करता है। तो पिछली बार हमने श्लोक क्रमांक लिया था 62, जिसमें भगवान अर्जुन से कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसाम संगस तेषु उपजायते संगात संजायते कामात कामात क्रोधो भी जायते। तो इस श्लोक का विभाजन इस प्रकार से हुआ था कि विषय वस्तु पर जब हमारा ध्यान लगता है तो उसे आसक्ति उत्पन्न होती है उस विषय वस्तु के प्रति, उस आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और यदि कामना पूरी हो जाए तो लोभ और कामना पूरी न हो तो क्रोध। तो अंततः दोनों स्थितियों में व्यक्ति अपने आप को कहां पाता है, या तो लोभ में या क्रोध में, जो कि दोनों अनर्थ हैं। षड रिपु जो हमारे हैं उनमें से ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण अनर्थ हैं, क्रोध और लोभ। तो भगवान कह रहे हैं कि उसकी शुरुआत होती है जब केवल विषय वस्तु के ऊपर सोचने से नहीं बल्कि विषय वस्तु पर ध्यान करने से। तो एक है कि विषय वस्तु का विचार आता है, लेकिन जब उसके ऊपर हम ध्यान केंद्रित करते हैं तब बाकी की जो श्रृंखला है वो सिद्ध होती है। इसलिए जब अर्जुन को भगवान आगे भी भगवद गीता में कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, तो उसमें अब भगवान कह रहे हैं कि मुझ में मन लगाओ, मेरी भक्ति करो, मुझे नमस्कार करो इत्यादि। तो वहां पर भगवान ये नहीं कह रहे कि केवल सोचो मेरे बारे में, ये नहीं कह रहे कि बस सोचो मेरे बारे में, भगवान कह रहे हैं ध्यान लगाओ। जैसे कि यहां पर विषय वस्तु पर सोचने से कुछ नहीं होता अपितु ध्यान लगाने से होता, उसी प्रकार से भगवान के विषय में केवल हम सोचेंगे तो हां उसमें कुछ तो फल प्राप्त होगा, लेकिन भगवान जो अपेक्षा रख रहे हैं वो केवल हमारी सोच की अपेक्षा नहीं है, भगवान अपेक्षा रख रहे हैं ध्यान। इसलिए जप के समय और बाकी भी भगवान के दर्शन के समय उसे हर समय ध्यान कहा गया है। रूप ध्यान, नाम ध्यान, लीला ध्यान, गुण ध्यान, ध्यान कहा गया है उसे। तो जो पिछला श्लोक और आज का श्लोक ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है और दोनों संबंधित हैं, एक प्रकार से भगवान ने एक ही सांस में दोनों श्लोक कहे होंगे। लेकिन हम चाहे कितनी भी सांसें लगा लें, ये दो श्लोक को समझने के लिए पता नहीं कितने जन्म लग जाएंगे. कृष्णा माइट हैव स्पोकन इन वन ब्रेथ बोथ ऑफ दीज श्लोकस, बट वी माइट हैव टू टेक मेनी ब्रेथ्स इन मेनी लाइफ टाइम्स द प्रैक्टिकलिटी ऑफ दीज टू वर्सेस. तो आज का ये जो श्लोक है ये भी इतना महत्वपूर्ण है कि आज हम केवल भाग एक लेंगे श्लोक का, और अगले बुधवार को यही श्लोक फिर लेंगे भाग दो. क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति. श्लोक का अनुवाद इस प्रकार से है, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है. जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है. तो यहां पर फिर से भगवान एक सीक्वेंस दे रहे हैं. शुरुआत हुई है विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने से, फिर आसक्ति कामना, और भगवान ने कहा क्योंकि भगवान जानते हैं कि संतुष्ट नहीं होने वाला है जी, इसलिए भगवान वो लोभ के साइड में गए नहीं, वो तो हमने एक्स्ट्रा लगा दिया था. इसलिए भगवान ने क्या कह दिया, क्रोध. तो क्रोध के पश्चात फिर यहां पर मोह, और कौन सा मोह, सम्मोह, साधारण मोह नहीं, बहुत विशेष प्रकार का मोह, और उसके पश्चात स्मरण शक्ति वो विभ्रमित हो जाती है उस जीव की, तत्पश्चात बुद्धिनाश, और फिर मनुष्य भवकूप में गिर जाता है. तो जो नोट्स निकाल रहे हैं उनके लिए ये भगवान आज के श्लोक की श्रृंखला बताएं. क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृति भ्रमशात. स्मृति भ्रमशात का अर्थ होता है मेमोरी लॉस, याददाश्त खो जाना, फिर बुद्धिनाश, और अंततः प्रणश्यति. प्रणश्यति इस भौतिक संसार में फिर गिर पड़ता है. जैसे आपने देखा है दलदल, कोई दलदल में से निकलने का प्रयास कर रहा है, और कई बार थोड़ा सा गलत प्रयास करने के वजह से वो और दलदल में खिंच जाता है. तो उसी प्रकार से हर एक जीव अपनी कठिनाई से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है, परंतु दुर्भाग्यवश इस संसार में वो जीव सहारा किसका ले रहा है, जैसे कोई दलदल में उस दलदल का ही सहारा लेकर निकलने का प्रयास करे तो और फंसता जाता है. वैसे ही जब इस संसार में वो अपने ही अनर्थों के सहारे बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उन्हीं अनर्थों की वजह से प्रणश्यति, भगवान यहां पर बोल रहे हैं कि वो जो उसके जंजाल का सिस्टम उसी के अंदर छिपा हुआ है, और मुक्ति का भी उसी के अंदर छिपा हुआ. तो हमारे अंदर हमारे बंधन के सारे कारण छिपे हुए हैं, और हमारे ही अंदर हमारे मुक्ति के कारण छिपे हुए हैं. हमें करना क्या है, वो प्लग निकालकर, माया देवी का प्लग निकालकर भगवान श्री कृष्ण के अंतरंगा शक्ति का प्लग डालना है. तो इसलिए भगवान यहां पर हमारे अनर्थों का विश्लेषण कर समझा रहे हैं कि जान लो ये एक डॉक्टर का डायग्नोसिस जैसा है. जैसे डॉक्टर डायग्नोसिस देता है वो बताता है कि इसके वजह से ये यहां यहां ये तुम्हारे लक्षण है, अंततः यदि तुम उसका उपचार नहीं करोगे तो क्या होगा, प्रणश्यति, खत्म। तो डॉक्टर यदि जब बोल रहा है कि प्रणश्यति हो जाएगा तुम्हारा, तो ये भगवान जो बोल रहे हैं कि प्रणश्यति, ये उसी के समान है। तो क्योंकि आज के श्लोक में भगवान ने क्रोध के विषय में चर्चा की, शुरुआत किससे हुई आज के श्लोक की, क्रोधात् भवति सम्मोह। तो आज हम, क्योंकि ये बहुत कलयुग में क्रोध कहा गया है कि क्रोध जो है ये बड़े बड़े जो दिग्गज होते हैं जैसे ऋषि मुनि, जो काम वासना लोभ इत्यादि का भी समुद्र पार कर लेते हैं, जैसे विश्वामित्र मुनि। विश्वामित्र मुनि वो पहले प्रलोभित हुए मेनका के रूप से, तो काम वासना वो कहते हैं कि उससे प्रलोभित, फिर उसके बाद में उन्होंने ठान लिया कि नहीं, मैंने बहुत बड़ी गलती की, बहुत समय बीत चुका था। फिर जब वो तपस्या में लगे तो क्रोध के वशीभूत हो गए, वो रंभाई जब, तो फिर महसूस हुआ कि अरे वो समुद्र तो मैंने पार कर लिया था काम वासना का, लेकिन अब क्रोध के छोटे से कीचड़ में मैं डूब गया। तो आज का हमारा सेमिनार रहेगा एंगर मैनेजमेंट। ये काफी समय पहले मैंने एक कॉर्पोरेट प्रोग्राम लिया था एंगर मैनेजमेंट। तो क्योंकि यहां पर भी भगवान, देखिए भगवद गीता में जितने सारे अलग अलग कॉर्पोरेट सेमिनार्स हैं सब इंक्लूडेड है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, जितने सारे मैनेजमेंट है सारे इसके अंदर छिपे हुए। तो आज क्योंकि भगवान ने क्रोध के लक्षण क्या है, हालांकि आगे के जितने भी हैं वो स्मृति भ्रमशात, बुद्धिनाश और प्रणश्यति, उसकी चर्चा हम हमारे भाग दो में करेंगे, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण है। कलह जिस युग में हम रह रहे हैं, कलह कहां से शुरुआत होता है, ये क्रोध से, दंभ और क्रोध इससे शुरुआत इसका होता है। इसलिए ये कलह प्रधान युग कलयुग जो है, और हमारे लिए कलह की शुरुआत होती है क्रोध से, बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि उसे कैसे मैनेज किया जाए। तो कुछ विशेष कोट्स हैं, कई स्लाइड्स ये अभी इंग्लिश में आएंगे क्योंकि वो हिंदी में अनुवादित नहीं कर पा रहे थे, करते तो वो ज्यादा मुश्किल होता आप लोगों को समझना। जैसे ये बहुत एक फेमस कोट है, एंगर इज जस्ट वन लेटर शॉर्ट ऑफ डेंजर, कि वो डी निकाल दो तो क्या है, एंगर, और डी डाल दो तो क्या है, डेंजर। तो दोनों, एंगर और डेंजर, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। तो उसी प्रकार से क्रोध जो है, और खतरनाक क्रोध, हर समय क्रोध खतरनाक ही कहा जाता है ना। कभी आपने सुना कोई किसी को कह रहा है कि कितना आपका मधुर क्रोध है, क्रोध की तुलना कभी मधुरता से नहीं की जाती, हर समय ये सारे शब्द होते हैं, डेंजर, खतरनाक। कभी कभी हम भी ऐसे ही दिखते हैं, हमको लग रहा होगा कि इतने गुस्से में क्यों है ये। होल्डिंग एंगर इज लाइक ग्रैस्पिंग हॉट कोल बिफोर यू थ्रो इट ऑन द अदर पर्सन। तो जब हम किसी के ऊपर क्रोधित होते हैं तो हम अलग अलग प्रकार से अपना क्रोध व्यक्त करते हैं, कई बार आंखों से, आंखों से भी व्यक्त, कोई व्यक्ति जैसे हमारे परिवार में एक हमारी क्या कहते हैं, ताई जी जैसे वो थी, बड़ी माँ बोलते हैं ना शायद, तो वो कई बार, वो डांटने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, उनकी आंखें ऐसी थी कि जो यहां पे दिख रहा हो सब हो जाता था, धुआं निकलना ये सब। तो अलग अलग प्रकार से व्यक्ति अपना क्रोध व्यक्त करता है, शब्दों में, अपने व्यवहार में, चेहरे के ऊपर, और फिर कई बार उससे भी ज्यादा। इसलिए विश्व महायुद्ध जो शुरू होते हैं कई बार ऐसे ही छोटी छोटी बातों से शुरू। तो यहां पर बताया गया है कि जब कोई अपना क्रोध किसी दूसरे के ऊपर उतारना चाहता है या उतारता है किसी भी तरीके से, तो अपने हाथ में जलता हुआ कोयला ले रहा है उस पर फेंकने के लिए। तो यदि जलता हुआ कोयला उसने लिया है उस पर फेंकने के लिए, तो सबसे पहले क्या होगा? उसी का हाथ जलेगा ना। और भगवान ने इस श्लोक पे कहा है बुद्धि नाश, क्योंकि ये नहीं कि वो कुछ ग्लव वगैरह पहन के, क्योंकि बुद्धि नाश हो जाता है। अगर बुद्धि क्रोध के साथ में होती तो सबसे पहले वो जलता हुआ कोयला उठाता ही नहीं। क्या उठाता? बर्फ उठाता। एंगर इज लाइक अ मैचस्टिक दैट ओनली हैज अ हेड बट नो इंटेलिजेंस, हेंस इट फ्लेयर्स अप। देखा वो तिली, माचिस की तिली, उसके बारे में यहां कहा गया उसको हेड बोलते हैं, मैचस्टिक का हेड है। इसलिए क्रोध जब किसी को आता है तो वो माचिस की तिल के समान हो जाता है। सर तो है लेकिन बुद्धि नहीं है उसमें। हाँ, क्योंकि वो सब कुछ जो कर रहा है वो सब उसके दिमाग में ये सब कुछ गर्म होता है उसका। इसलिए जब वो उतारता है तो वो माचिस की तिली के समान, क्योंकि इसे यहां पर एग्जाम्पल दिया उसकी बुद्धि नहीं, इसलिए केवल जलता रहता है, जलता रहता है, जलता है, जलाता है, ये उसके लक्षण। और एक और अंतिम कोट, इफ हार्ट इज लाइक अ वॉल्केनो, क्या कहते हैं, ज्वालामुखी, देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट फ्लावर्स टू ब्लूम इन इट। कभी आपने देखा ज्वालामुखी में कोई बागीचा लगा रहा है, मोगरा, जैस्मीन, गुलाब, क्या निकलता है वहां से? ज्वाला, लावा, लावा निकलता है। ज्वालामुखी से क्या निकलता है? केवल लावा बाहर निकलता है। तो ये सारे जो कोट्स हमने यहां वहां से ढूंढे, ये सब हमें ये समझा रहे हैं कि चाहे जितना भी हम प्रयास करें, जब तक कि वो इमोशन हमारे अंदर, भगवान, उसकी भी चर्चा करेंगे कि भगवान के संपर्क में उसको ला सकते हैं उसको शुद्ध करने के लिए, लेकिन जब तक भगवान के संपर्क में वो क्रोध नहीं आता तब तक ये सब कुछ जो हमने अभी सुना ये सब उसके परिणाम देखे जाते हैं। क्योंकि कलयुग में सब लोग स्टाइल में जीतना चाहते हैं, तो क्रोध भी वो स्टाइल में करना चाहते हैं। जैसे सिनेमा में दिखाते हैं ना, वो हीरो जो है बहुत क्रोधी स्वभाव का दिखाते हैं तो लोग ज्यादा प्रसन्न होते हैं कि देखो, और उस ये उसके पोस्टर भी ऐसे दिखाते हैं कि एकदम गुस्से में, यहां वहां खून लाल पीला हो रहा है और बंदूक बंदूक से सबको उड़ा रहा है, मार रहा है, जितना क्रोध में वैसे वो ऑडियंस भी हाँ और मार, मेरी तरफ से भी दो तीन, तो उसको भी गुस्सा आ रहा है अभी, उसको तो पैसे दिए जा रहे हैं गुस्से होने के, आप तो पैसे भर रहे हो। मैंने जब ये सेमिनार लिया था तो उसमें ये टर्म यूज किया था कि हमारे, आप देखो अलग अलग उसके फ्लेवर्स होते हैं। जैसे आप देखो कि खिचड़ी, इस्कॉन के खिचड़ी को लो तो उसके अलग अलग फ्लेवर होते हैं। कई एकदम अगर कोई बीमार है, मलेरिया वगैरह हुआ है, वही खिचड़ी खाता है। और कई आप देखो कि एकादशी के बाद कई बार जो खिचड़ी बनती है, हालांकि नाम खिचड़ी का होता है लेकिन, और बंबई में बड़े बड़े लोग बड़े बड़े होटल में जाकर वो खिचड़ी इतने इतने पैसे देकर, वो कढ़ाई के अंदर वो बहुत रॉयल खिचड़ी होती है, उसके अंदर काजू किशमिश ये वो। तो वैसे ही क्रोध जो है उसके अलग अलग फ्लेवर, अलग अलग तरीके से, अलग स्टाइल में लोग क्रोध को व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले, पहला स्टाइल, लॉक इट अप। इसकी हम चर्चा करेंगे कि वो किस प्रकार से वो क्रोध व्यक्त होता है, या यहां पर व्यक्त भी नहीं हो रहा लेकिन है, अंदर है, व्यक्त नहीं हो पा रहा, उसको लॉक कर दिया है। फिर ये अक्सर देखा जाता है कि जैसे ही व्यक्ति क्रोधी हुआ, वो तुरंत अलग अलग तरीके से उस क्रोध को यहां वहां अपना महाप्रसाद बांटना शुरू करता है। क्रोध का महाप्रसाद अलग अलग तरीके से बांटता है। लेकिन भगवान हमें सिखा रहे हैं आज के श्लोक में कि उसे कैसे मैनेज करना है, उसे खत्म नहीं करना। भगवान नहीं कह रहे हैं कि ये जो हमारे अंदर इमोशंस हैं, ये इमोशंस को स्पिरिचुअलाइज करना, इसलिए उसे मैनेज करना है। हालांकि वो डैमेज कर रहा है, लेकिन कैसे उसे मैनेज करें कि भगवान की सेवा में भी उसे हम इस्तेमाल कर सकें। तो यदि हम सबसे पहले ये जो तरीका है, जब कोई व्यक्ति क्रोधी हो जाता है तो क्या उसका व्यवहार होता है, उसके बिहेवियरल सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहले ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, ऐसा नहीं कि क्रोध नहीं होता उनके अंदर, लेकिन जैसे ही कुछ ऐसी अवस्था आ जाती है जिसमें वो क्रोध में चले जाते हैं, तो वो पूरा अपने आप को, जैसे वो कछुआ होता है, अपने आप को एकदम विड्रॉ कर लेता है। अब है अंदर वो कछुआ, दिख नहीं रहा, खाली उसके ऊपर का वो शेल दिख रहा है, लेकिन कछुआ अंदर है। वैसे ही कई होते हैं, आप देखो रिश्तों में भी, परिवार में तुरंत वो इमोशनली विड्रॉ कर ले, तो उस क्रोध को अपने ही अंदर वो बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, वो जो दूसरी स्थिति है उससे तो अच्छे हैं, लेकिन ये भी सबसे प्रगत स्थिति नहीं जहां से कोई व्यक्ति क्रोध से ऊपर उठ सके। फिर उसके आगे की स्थिति क्या होती है कि वो जब अपने आप को विड्रॉ कर लेता है इमोशनली, तो फिर साइलेंट मोड में चला जाता है ना। फिर समझ में आ जाता है, जैसे कई बार आप देखो कि परिवार में कोई व्यक्ति क्रोधी हो चुका है, कोई गड़बड़ हुआ है, ऐसे अनबन हो गई, तो फिर एक प्रकार का बहुत भयानक साइलेंस मंडराता रहता है, भयानक साइलेंस होता है वो। जैसे मुझे याद है 31 दिसंबर की रात हम लोग ऐसे ही कीर्तन कर रहे थे, क्योंकि बाहर भी बहुत कुछ कीर्तन चल रहा था लेकिन वो कृष्ण कीर्तन नहीं चल रहा था, कली कीर्तन चल रहा था। तो हम मंदिर में, राधा गोपीनाथ मंदिर में हम कीर्तन करते करते, क्योंकि चौपाटी बगल में, बस 3 मिनट आप चल के जाओ चौपाटी, वहां तो हम कीर्तन करते करते वो चौपाटी में चले गए, वहां पहुंच गए, और वहां पर जो उनकी पार्टियां वगैरह सब चौपाटी पर चल रही थी, वहां बीच में जाके हम अपना मृदंग करताल लेकर, अब इनको समझ में नहीं आया कि ये, अब हमारे पास सब साउंड सिस्टम, माइक्रोफोन वगैरह सब था, तो इनको समझ में नहीं आया इनकी पार्टियां चल रही, अचानक बीच में गानों के लिरिक्स चेंज हो गए। तो फिर ये भी देखे कि इनके पास तो ज्यादा इंस्ट्रूमेंट है और ये लोग ज्यादा उत्साह से नाच रहे हैं, तो ये लोग भी शुरू हो गए। अब वो उस समय के वो वहां के जो भी कुछ नगर सेवक जैसे बोलते हैं हम, वो उस एरिया के, उनका नाम था प्रमोद नवलकर, वो वहां पर 31 की नाइट को पेट्रोलिंग पर थे, तो उन्होंने देखा मैं कीर्तन कर रहा था, तो बुलाया मुझे इधर, मतलब उनका कोई वो गया था असिस्टेंट मेरे को बुलाने के लिए कि साहब बुला रहे हैं। मैं गया तो मुझे कहता है, मराठी में सीधा बात करना शुरू कर दिया, मतलब मैं समझता हूँ मराठी, लेकिन ज्यादा ऐसा मैं किसी से कन्वर्स नहीं कर रहा, तो मराठी में बोलता है मला इथे स्मशान शांति पाहिजे। तो मैं जो पहले समझ में नहीं आया, तो मैंने कहा काय पाहिजे। मला स्मशान शांति पाहिजे। अब यहां पर बाकी वो लोग क्या कर रहे हैं, उसमें क्या स्मशान शांति मिल रही हो 31st की नाइट? वैसे ही सब मरे हुए हैं कलयुग में, वैसे मुंबई में आप देखो जिंदा मुर्दा घूमते रहते हैं। तो ये जो मैं सुना उसके अभी तक मुझे याद है कि देखिए अलग अलग प्रकार की शांति होती है ना। कई लोग मंदिर में आते हैं तो बोलते हैं बहुत शांत लगता है हमें मंदिर में। मंदिर में आते हैं, बाहर जितने सारे जद्दोजहद चलती रहती है, वहां से दूर होकर जब हम मंदिर में आते हैं, विशेष रूप से जब आपका प्रवचन शुरू होता है, तो बहुत शांति महसूस करते हैं। तो एक है मंदिर में आकर किसी को शांति अनुभव करता है, और स्मशान भूमि बहुत शांत रहता है ना, कब्रिस्तान बहुत शांत रहता है, लेकिन वहां की शांति वो बहुत भयावह शांति है। तो ये यहां पर बताया गया है कि जब रिश्तों में वो क्रोध इस स्थिति में आता है तो एक अलग प्रकार की, हमारे नवलकर जी की भाषा में, स्मशान शांति आ जाती है, फिर भयानक शांति आ जाती है। जैसे एक पति पत्नी आपस में इतना झगड़ा किए, नो टॉकिंग टर्म्स, बातचीत बंद, तब वो कर क्या रहे थे, चिट्ठी पर लिख रहे थे, बातचीत बंद तो चिट्ठी से एक दूसरे से वार्तालाप चल रहा था। तो पति ने चिट्ठी लिखी, भूख लगी है, तो पत्नी ने चिट्ठी लिखी, फ्रिज में सब बना के रखा है, गरम कर लो। तो वो बेचारा गया, उसने सब बना गरम करके ले लिया, फिर उसने चिट्ठी लिखी पत्नी को कि कल मुझे दिल्ली जाना है, मेरी फ्लाइट सुबह 5 बजे की है, मुझे उठा देना। समझ गए आप? वो उठा 7 बजे, चिल्लाने लगा, उसने कहा मैंने चिट्ठी लिखी थी 4:30 बजे, चिट्ठी लिख के रख दी थी, उठ जाओ। तो ये जो स्थिति होती है क्रोध अवस्था की, जिसके अंदर ये साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं एक दूसरे को। फिर जब कोई व्यक्ति अपने ही अंदर उस क्रोध को लेके घुटता रहता है, तो उसके वजह से, अब ये विज्ञान ने सिद्ध किया है, इट हैज बीन प्रूवन साइंटिफिकली, कि उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया है कि एक व्यक्ति जब बहुत क्रोधित अवस्था में रहता है तो उसका जो सलाइवा, उसके थूक को इकट्ठा किया, जब वो एकदम क्रोधित अवस्था में, और एक गिनी पिग होता है जानवर, उसको दिया गया, वो मर गया, इतना टॉक्सिन्स उसके क्रोध में बाहर निकला। और यहां तक ऐसे भी केसेस हैं जहां पर एक माता क्रोध अवस्था में अपना दूध पिला रही बच्चे को, और वो बच्चे के अंदर पॉइजनस टॉक्सिन्स दूध के द्वारा जा रहे हैं, मतलब उसके क्रोध के द्वारा। तो सोचिए कि यदि किसी का क्रोध इस अवस्था तक पहुंच सकता है कि वो पॉइजनस बन जाए, तो उसके लिए क्या हाल हो रहा होगा फिर। इसलिए आजकल ये जो लोगों को इतना कैंसर होता है, उसका मुख्य कारण है स्ट्रेस, एंजाइटी और ये एंगर, अलग अलग क्षेत्रों में जो उनको ये प्राप्त होता है उसकी वजह से। और फिर अंतिम है कि वो व्यक्ति बदले की भावना, हालांकि कई बार ऐसा होता है कि उसके अंदर क्षमता नहीं है कि वो उसका बदला ले सके, है? क्षमता नहीं उसके बदला लेने की, लेकिन भावना अंदर वो उसको कल्टीवेट करता रहता है। न तो उसके पास कोई पैसे होंगे, न शारीरिक बल होगा, न और कुछ, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर वो घुटता रहता है कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं एक न एक दिन, न तो इस जन्म में न दूसरे जन्म में, कोई तो जन्म में उसका बदला लूंगा। जैसे बहुत क्रोधी बच्चा, इसका नाम था बॉबी, तो छोटे से कद का, लेकिन क्रोध उतना नहीं था उसका, कद छोटा था लेकिन क्रोध एक बड़े खूंखार जायंट के जैसा उसका। तो अब इसके अंदर इतनी बदले की भावना थी, लेकिन ये मन ही मन उसको दूर करना भी चाहता था, लेकिन हो जाता था, जब भी क्रोधित हो जाता था तो किसी न किसी प्रकार से वो उसके अंदर बदले की भावना आ जाती थी। तो उसके पिताजी ने कहा कि देख भाई, तेरे को जब भी क्रोध आता है तो एक काम किया कर, जो बैकयार्ड है अपना वहां जा, वहां एक लकड़ी की फल्ली पड़ी हुई, एक हथौड़ा ले और एक कील, अपना सारा क्रोध उसके ऊपर उतार, मार ठोक पीट कर। तो वही करता वो, दिन में उसको दो तीन बार इतना क्रोध आता कि पीछे जाता, वो लकड़ी की फल्ली लेता, कील और हथौड़ा से जोर जोर से मार के उसे लगता है कि हाँ मैं अपने उतार दिया क्रोध। तो अब हुआ क्या कि वो छोटी सी लकड़ी की फल्ली भर गई पूरी कीलों से। अब वो तो कीलों से भर गई, लेकिन इसका क्रोध अभी तक शांत नहीं हुआ, आए दिन क्रोधी हो रहा है। तो इसने अब कहा कि दूसरी फल्ली चाहिए। तो पिताजी कहे चलो, अभी पिताजी लेके गए उसको पीछे, और जितनी कील उसने उस पर ठोकी हुई थी हथौड़े से, पिताजी ने कहा भी एक एक कर निकाल। अब वो कील निकालना उसे इतना मुश्किल हुआ, क्योंकि उसने इतनी जोर से वो कील को ठोका था। तो एक एक करके पिताजी ने बोला निकाल, तो निकाला उसने एक एक कर, और फिर पिताजी ने दिखाया देखो इस लकड़ी की फली की हालत क्या है। तो सोचो, यही क्रोध तुम किसी और पर उतारते तो उसके हृदय की हालत क्या होती। और क्योंकि तुमने उस क्रोध अवस्था में इतने जोर से इन कीलों को ठोका था, तो जितने जोर से तुमने उन कीलों को ठोका, उतने ही कठिनाई और परिश्रम से तुम्हें उनको निकालना भी पड़ा, उससे ज्यादा। तो वो ये शिक्षा दे रहे थे कि हम जब किसी के ऊपर क्रोध उतारते हैं तो उस समय हम महसूस नहीं करते। तो वो बच्चा जब कील ठोकता उस समय महसूस नहीं कर रहा था, जब निकालने की नौबत आई तब समझ में आया कि अरे मैंने इतना जोर से क्यों ठोका था इसको। तो वैसे ही जब व्यक्ति अपने अंदर उसे घुट घुट कर बदले की भावना और ये उस प्रकार भयावह शांति का जीवन, तथाकथित शांति का जीवन जी रहा है, तो वो उसे अंदर ही अंदर वो क्रोध मारता रहता है। अब अगली स्थिति, जब वो व्यक्ति उस क्रोध को व्यक्त करना शुरू करता है, उसे कहते हैं टर्न इट लूज। तो शुरुआत गुणगान से होती है अगले व्यक्ति के, अलग अलग प्रकार की गालियां गलोच यहां से शुरू करता है। तो इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यदि क्रोध अग्नि के समान है तो जो अपशब्द हैं वो हवा के समान है। जैसे किसी जंगल में यदि आग लगी है तो एक पेड़ पर आग लगी है, लेकिन यदि उस जंगल में हवा भी चल रही है तो वो हवा क्या करती है, वो एक पेड़ पर जो आग लगी है वो दूसरे पेड़ पर ले जाती है, फिर तीसरे, फिर चौथे, ऐसे। तो वैसे ही आपने देखा साधारणतः कहीं पर किसी गली में कोई झगड़ा हुआ दो के बीच में, तो सबसे पहले होता क्या है कि मान लो गाड़ी चला रहे हैं और वो लग गई गाड़ी, तो जैसे ही लग गई गाड़ी फिर वो वहां से बोलना शुरू किया, अब तो खिड़की ऊपर है तो सुनाई नहीं दिया, तो क्योंकि वो बोल रहा है तो इसने खिड़की नीचे की सुनने के लिए क्या बोल रहा है, क्योंकि अहंकार इतना है कि चाहे मेरे बारे में कुछ भी बोल रहा मुझे सुनना है। तो जब उसको सुनाई दे दिया तो अब बाहर आ गए दोनों, बाहर आके झगड़ा कर रहे हैं, तब कुछ लोग वहां पर उसको रोकने के लिए जाते हैं, वो एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, खानदान तक पहुंच गए, पूरे बाप परदादा तक पहुंच गए। तो बीच में कोई जाता है उसको चुप करने के लिए, तो अब उसको प्रतीत सुना देता है, तेरे बाप का क्या जा रहा है मैं इसके साथ झगड़ा करूं, तू क्यों बीच में आ रहा है, तो ये मेरे बाप को क्यों ला रहा है बीच में, तू मैंने क्या किया। अब यहां पे तीसरा आदमी शुरू हो गया, तो वो जो तीसरा शुरू हो गया उसकी पत्नी वहां चिल्ला रही है, क्यों नहीं लाए तुम्हारे बाप को, तो ये तेरी ऐसी हिम्मत, मेरे को यहां से चिल्ला रही है। तो देखो एक एक करके वो जैसे अग्नि को हवा, भागवत में जो उदाहरण दिया है कि वो हवा एक पेड़ से दूसरा पेड़ और पूरा जो वन है, पूरा वो जो जंगल है, वो आग से विध्वंस हो जाता है उस हवा की वजह से। तो क्रोध की तुलना अग्नि से और ये सारे जो अपशब्द हैं इनकी तुलना उन वो हवा से की गई। अब वही क्रोध जिह्वा पर बैठता है तो वो अपशब्द निकलते हैं, वही क्रोध जब शरीर की इंद्रियों से व्यक्त होना शुरू हो जाता है तो वो ये फेंकना वो करना। जैसे मुझे याद है बचपन में हमारे गांव का जो घर, वहां पर दादा दादी जहां रहते थे, तो वहां पर एक ऐसा आंगन, राजस्थान में जैसे वो रेती का आंगन होता है बीच में बालू, तो आंगन में मैं खेल रहा था और वहां पर ऐसा है कि वो बर्तन सारे वहीं पे धुलते हैं, मतलब पानी की भी जरूरत नहीं क्योंकि पानी तो होता नहीं था, तो वो रेती से साफ हो जाते हैं सारे बर्तन। तो सारे बर्तन वर्तन पड़े थे तो हम खेल रहे थे, तो अब कुछ हुआ होगा हमारे दादाजी और दादी जी के बीच में, हम छोटे से हमें पता नहीं क्या हुआ होगा, मुझे लेकिन इतना याद है कि दादाजी बहुत क्रोधित हुए थे, बहुत गुस्से में थे, और अक्सर जब पति गुस्से में होता तो ज्यादा उस समय बोलता नहीं, बोल नहीं पाता, तो अलग अलग तरीके से व्यक्त करता है वो। तो वो ढूंढ रहे थे अपने क्रोध को उतारने के लिए, कहीं तो उतारे, तो अभी हम लोग बैठे थे वहां पे, हमारे साथ कुछ नहीं किया, तो उधर एक गिलास पड़ा था, तो वो गिलास को रखा, अब उनकी काफी उम्र हो चुकी थी, वो गिलास को रखा और उनको उस गिलास को लात मारना था, ऐसे अपना क्रोध वो गिलास के ऊपर व्यक्त करेंगे लात मारकर। तो वो रखा, अब उनको ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो थोड़ा रनअप लिया पीछे और वो गिलास को लात मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पैर कभी यहां चले जा रहे हैं, वहां दिखाई नहीं दे रहा, वो ग्लास तीन चार दिख रहे होंगे शायद। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक दादाजी ग्लास को क्यों लात मार रहे हैं, क्योंकि पहले तो कभी इनको देखा नहीं ग्लास के साथ खेलते हुए, ऐसे हम ही खेलते थे, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं फिर गाइड कर रहा था उनको थोड़ा लेफ्ट राइट, मैंने कहा दादाजी थोड़ा आगे आके मारिए, आप मिस कर रहे हैं, अभी ट्राई कीजिए, अभी थोड़ा इधर से ट्राई कीजिए, ये एंगल से ट्राई कीजिए, वो एंगल, और वो उस क्रोध अवस्था में सीरियसली मेरा डिक्टेशन सुन रहे हैं, तो थोड़ा राइट में जा रहा और मेरे को पूछ रहे हैं अभी, अच्छा यहां से कहां से मारना बताओ, तो मुझे बाद में समझ में आया, फिर और कुछ बवाल हुआ कि कोई व्यक्ति किसी क्रोध अवस्था में तो कितना वो उसको कहीं तो उतारने के लिए कितना सीरियसली लग जाता है, जुट जाता है कि अभी जो भी दादी जी ने कुछ सुनाया होगा वो तो छोड़ दो, अभी ये ग्लास साला ये क्यों नहीं मेरे हाथ लग रहा है, वो उसके ऊपर गुस्सा आ गया। अब उसकी क्या गलती, वो तो अच्छा हुआ गया कि मैंने सही बता दिया, लास्ट में मार दिया उन्होंने, नहीं तो मैं होता वो ग्लास के बदले तो ठीक से बता नहीं रहा तो फाइनली उनके कुछ तीन चार अटेम्प्ट के बाद फिर उन्होंने जब वो ग्लास को मार दिया फिर थोड़ा क्रोध शांत हो। तो जब कोई व्यक्ति इस अवस्था में होता है तो यहां वहां सब क्रॉकरी फेंकना। अब कई बार तो बंबई में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं, भयावह घटनाएं, जहां पर पति आया, ये कहीं सायन में ऐसी घटना मैंने सुनी थी बहुत वर्षों पहले, पेपर में ये आई थी खबर कि वो पत्नी से कह रहा है मुझे चाय चाहिए, तो पत्नी ने कहा मैं भी तो ऑफिस से आई हूं, मुझे भी तो चाहिए चाय, मुझे कौन बना के देगा। तो चाय के प्याले के ऊपर ऐसा झगड़ा हुआ कि उसने बालकनी से फेंक दिया पत्नी, और फिर जब उसे समझ में आया कि अरे मैंने क्या किया, तो वो खुद भी कूद गया। इसलिए प्रभुपाद ने कहा चाय नहीं पीनी। देखो कितनी समस्या बच जाती है, घर आओ पानी पियो बैठो तो क्रोध शांत भी होता, चाय से और बढ़ जाता है। तो ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि लोग एक दूसरे को मार दिए हैं उस क्रोध की वजह से। और ये एक लक्षण कि जिसमें अब वो व्यक्ति बस इसके वजह से उसके वजह से, ये नहीं होता तो सब कुछ ठीक हो जाता, वो ना वो बहू के वजह से सब कुछ हो रहा है, और बहू बोलती है सास के वजह से सब कुछ हो रहा है, वो सास भी कभी बहू थी, छास भी कभी दही थी, ये सब जो भी, तो ये उसके वजह से, वो उसके वजह से, तो इसको कहते हैं ब्लेम गेम, उंगली कर करके इसकी वजह से, और कुछ नहीं तो बाहर वो कुत्ता क्यों भौंक रहा है। अब उसको क्या पता आप लोग क्या करें, वो तो अपना काम कर रहा है, कुत्ता है वो भौंकेगा, तो कुत्ता क्यों भौंक रहा है उसकी वजह से, यहां पर भी शुरू हो जाता है भौंकने। फिर अब ये एक बहुत ही कॉमन लक्षण आता है, बहुत कॉमन सिम्टम कि झगड़ा हुआ है, हो सकता है कोई छोटी सी बात को लेकर, जैसे कोई म्युनिसिपैलिटी का नल है तो लोग लगे हुए हैं अपना बाल्टी वो सब कुछ लगाए हुए, तो कोई देरी कर रहा है अपना जो भी भरने के लिए डब्बा वगैरह, तो दूसरा व्यक्ति क्रोध उसके ऊपर उतार रहा है। तो अब बात वहां पर क्या है कि वो जल्दी काम नहीं कर रहा, लेकिन वो निकाल लेता है कि अरे तू जब से इस मोहल्ले में आया है ना, तब से नाक में दम कर रखा, एक तो रात को जोर जोर से तू रेडियो चला के बैठता है, अभी उसका इससे कोई संबंध नहीं है, वो निकाल लिया, और मुझे पता है वो तो किस खानदान से, सारे तुम्हारे सारे खानदान ही ऐसा ही है, तुम्हारे परदादा को भी मैं जानता हूं, वो भी ऐसे ही थे, नाक में दम कर रखे, वहां तक पहुंच गया, वो पता नहीं कौन से लोक में गए होंगे, उधर तक पहुंच गया, अरे अभी म्युनिसिपैलिटी का पानी जा रहा है, लेकिन वो पहुंच गया पितृलोक में। तो कुरेद कर वो बाहर निकलना जाता है, हाँ उस वो 10 साल पहले 20 साल पहले ये वो पिछले जन्म में ये क्या क्या किया था। तो ये जिसके अंदर व्यक्ति अपना क्रोध व्यक्त करता है और जितने पिछले क्रोध उसने अंदर दबा रखे हैं वो सारे बाहर निकालना शुरू कर देता है। तो पहला स्टेज आप लोग अभी से हंसने लगे, मैड फॉर ईच अदर, है ना, कहते हैं ना पागल हैं एक दूसरे के लिए. फिर बाद में आता ना स्थिति मेड फॉर ईच अदर, जो विवाह हो जाता है तो वी आर मेड फॉर ईच अदर, विल सिगरेट. और फिर अंतिम तो शुरुआत कहां से हुई, मैड फॉर ईच अदर और फिर मैड बिकॉज ऑफ ईच अदर. जैसे एक ये यूरोप में एक ये घटना हुई कि एक दंपति, अब देखिए यूरोप में 25वीं उनकी शादी की सालगिरह मना रहे हैं उन्हीं की, तो बहुत रेयर है दोनों अपनी 25वीं सालगिरह मना रहे हैं. मतलब सालगिरह मनाते हैं लेकिन दोनों साथ में रहकर एक दूसरे की शादी की सालगिरह बहुत रेयर है. तो 25वीं सालगिरह उनकी मनाई जा रही, तो उसमें पूछा गया, मतलब काफी हेडलाइंस बन गया कि भाई 25 साल तक ये लोग एक साथ रहे कैसे, बहुत अनोखी बात है यूरोप में. तो जब पूछा गया तो उनका इंटरव्यू लिया गया, तो पति वो कहता है इंटरव्यू में कि मैं आपको आज बताता हूं हमारे सक्सेसफुल 25 साल शादी का राज. जब हमारी शादी हुई थी 25 साल पहले, तो हम पहले साल हनीमून के लिए गए थे ब्राजील, और हमारी धर्मपत्नी, उनको घुड़सवारी करने का बहुत शौक है, हॉर्स राइडिंग. तो कहा कि हम घुड़सवारी करते हैं, वहां पर बहुत फेमस है हॉर्स राइडिंग, तो हॉर्स राइडिंग करते हैं. तो मैंने कहा ठीक है, मैंने एक घोड़ा लिया, उन्होंने एक घोड़ा लिया, हम दोनों घोड़े पे, हमारा विशाल शादी हुई है, हनीमून है, अच्छे से घोड़े पे बैठे हैं, वो घोड़े पे बैठी, मैं घोड़े पे. तो हुआ क्या कि उसका जो घोड़ा वो जोर से छिंघाड़ा और गिरा दिया उसे नीचे. तो उसने घोड़े की तरफ गुस्से में देखा और कहा दिस इज योर फर्स्ट टाइम. फिर घोड़े पे बैठी, फिर आगे गई, फिर घोड़ा छिंघाड़ा नीचे गिरा दिया, फिर गुस्से में उसने कहा दिस इज योर सेकेंड एंड लास्ट टाइम. किसको, घोड़े को कहा. फिर घोड़े पे बैठी, वापस घोड़ा चिंघाड़ा और गिरा दिया उसे नीचे. इसने बंदूक निकाली, मार डाला घोड़े. मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने कहा पागल हो तुम, ये अरे तुम्हें दिमाग है कि नहीं, मार डाला उस घोड़े को. उसने वो बंदूक दिखाई, दिस इज योर फर्स्ट टाइम. तो उसके बाद से मैंने कभी चिंघाड़ा नहीं. 25 साल हो गए. तो कई बार होता है कि कई रिश्तों में कोई एक व्यक्ति यदि बहुत ज्यादा क्रोधी स्वभाव का हो तो दूसरे को ब्लॉटिंग पेपर बनना पड़ता है सब उसका क्रोध लेने के लिए. तो अब मैनेजिंग इट जो सबसे महत्वपूर्ण है, ऐसे नहीं छोड़ देंगे आपको. तो इसमें स्टेप वन है कंट्रोलिंग इट, स्टेप टू है कॉन्करिंग इट. तो कंट्रोल में ये सारी चीजें कि जब हम इससे पीड़ित होते हैं, तो यहां कहा गया है कि पेशेंटली, प्राइवेटली, प्रूडेंटली, पावरफुली, पॉजिटिवली, पर्सनली. राधानाथ महाराज वो एक बहुत सुंदर वाक्य हर समय कहा करते थे, इफ यू वॉन्ट टू करेक्ट समवन और क्रिटिसाइज समवन, डू इट इन प्राइवेट, एंड इफ यू वॉन्ट टू ग्लोरिफाई समवन, डू इट इन पब्लिक. है ना, अक्सर कलयुग में उल्टा होता है कि जब किसी को डांटना होता है तो सारी दुनिया मोहल्ले के सामने शुरू कर देते हैं डांटना, ताकि बाकी लोग भी सुनाई दें उनको. लेकिन यहां पर बताया गया है कि यदि हमें भी अपने क्रोध के ऊपर वश पे लाना है उस क्रोध को, तो ये सब कुछ जैसे यहां कहा गया है पेशेंटली प्राइवेटली, कि एक तो धैर्य रखते हुए, क्योंकि ये जो इमोशन अभी आया है, ये आने से पहले हमारी स्थिति क्या थी और ये जाने के बाद हमारी स्थिति वैसी होने वाली, तो वो धैर्य मेंटेन रखना। और फिर जैसे भगवान यहां पर बता रहे हैं कि शास्त्र पर आधारित उस क्रोध को समझने के बाद पहले से ही क्या स्टेप्स ले लेना, इसे कहते हैं प्रूडेंटली और पॉजिटिवली और पर्सनली। हालांकि इसे ये समझना है कि ये मेरी व्यक्तिगत बीमारी है, ये नहीं कि उसके वजह से, इसके वजह से, इसके वजह से। हाँ, कई बार कई सूत्रधार बनते हैं, लेकिन जैसे प्रभुपाद ने कहा, Why should I blame the instrument of my own karma? है ना? और ये उदाहरण है कि जैसे कई बार हम खाते खाते अपनी जीभ काट लेते, है ना? तो खाते खाते जीभ अपने काट ली, तब किसको दोष दोगे? जिसने वो खाना बनाया उसको बुला के डांटोगे, अरे क्या खाना बनाया तुमने, मैंने अपनी जीभ काट। क्या वो जिस थाली में खा रहे हो उसको दोष दोगे? क्या दांत को दोष दोगे, तोड़ दोगे उसको? क्या जीभ को, कि ये जीभ क्यों है अंदर? नहीं। तो उसी प्रकार से हमें व्यक्तिगत रूप से उसे डील करना है, ये पहले से ही समझ लेना चाहिए जब क्रोध आए उससे पहले, दैट वी हैव टू डील पर्सनली, दिस इज माय पर्सनल इश्यू। तो गुरु द्रोणाचार्य की कथा है महाभारत में, कि द्रोणाचार्य वो पांडवों को सिखा रहे थे, यही एंगर मैनेजमेंट का सेमिनार दिया उन्होंने, और सब बताया कि कैसे कैसे, जैसे हम लोग सब थियोरी पढ़ रहे हैं उसके, तो वैसे सबको बताया और फिर सबको कहा कि ये याद करके आना, कल आपको सुनाना है। तो सारे पांडव उन्होंने सुना दिया युधिष्ठिर महाराज को छोड़कर। तो युधिष्ठिर महाराज वो नहीं सुना पाए, तो द्रोणाचार्य युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं ठीक है एक और दिन मैं देता हूं, याद करके आना, कंठस्थ कर ले। दो दिन हुए युधिष्ठिर महाराज नहीं सुना पाए, तीन दिन, चार दिन, पांच दिन, छह दिन, द्रोणाचार्य ने अब कह दिया कि मैं अंतिम मौका दे रहा हूं, छह दिन हो चुके हैं, अंतिम मौका मैं दे रहा हूं। सातवें दिन भी युधिष्ठिर महाराज नहीं, तो द्रोणाचार्य ने एक तमाचा लगाया। तो जैसे ही अब तमाचा पड़ा युधिष्ठिर महाराज के गाल पर, युधिष्ठिर महाराज पांच मिनट तक शांत रहे और फिर पूरा जो पाठ था वो सुना दिया वर बैठे। तो द्रोणाचार्य बोले, ये तुम्हें याद था तो थप्पड़ खाने से पहले क्यों नहीं सुनाए? तो युधिष्ठिर महाराज कहे, वो मेरे को थियोरेटिकली याद था, लेकिन प्रैक्टिकली मैं चेक करना चाहता था कि जब मुझे कोई थप्पड़ मारता है तो सब मुझे याद आता है कि नहीं। तो अभी जब हम सेमिनार सुन रहे हैं तो हमको बहुत, हाँ ऐसा, ये लॉक इट अप, है ना, टर्न इट लूज, मैनेज इट, स्टेप वन स्टेप, जैसे ही बाहर निकले लाइन में खड़े हुए है ना, और कोई हमसे आगे आ गया और देख रहे हैं कि वहां पे वो गुलाब जामुन उतना ही बचा है ना, कई बार लाइन में काउंट कर लेते हैं, उधर चार गुलाब जामुन है, कितने लोग हैं, इधर पांच है तो द्रोणाचार्य वो सुनाए, लेकिन उन्होंने फिर युधिष्ठिर महाराज से कहा कि भाई मैंने तुम्हें ये एंगर मैनेजमेंट का सेमिनार तो दिया, लेकिन मैं खुद भूल गया प्रैक्टिकली रियलिस्टिकली। तो इसलिए जब हम एयरफोर्स में थे तो हमारे इंस्ट्रक्टर ने हमको एक बहुत अच्छा स्लोगन दिया था एक सोल्जर के लिए, क्या स्लोगन है, उन्होंने कहा कि एक जो सैनिक होता है उसको हर समय ये स्लोगन ध्यान में रखना चाहिए। और वो स्लोगन इस प्रकार से था, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। कि जितना पसीना तुम जब कोई युद्ध नहीं हो रहा है जब बहाओगे तो उतना ही कम रक्त बहेगा, खून बहेगा जब युद्ध होगा। तो क्या ज्यादा मूल्यवान है, पसीना या रक्त? तो इसलिए पीस टाइम में जितना हो सकते पसीना बहाओ। द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। उसी प्रकार से हाँ, जब क्रोध अवस्था हमारी नहीं आई है उस समय हमें प्रयास करना है जितना ज्यादा हो सके। क्या प्रैक्टिस करना है? इस क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करने का। और कैसे है? हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम 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 हरे। तो जितना हम ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप विनम्र भाव से, इसलिए भगवान ने क्या कहा है, तृणादपि सुनिचे न तरोर इव सहिष्णुना, जो तृण से भी अधिक नम्र और एक वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु, ऐसी अवस्था में ही दूसरों को मान देकर कभी मान की अपेक्षा न करते हुए जो जप करता है वो भगवान को प्रसन्न करता है। तो कॉन्करिंग स्टेप टू, इसमें सबसे पहले रिकग्नाइज, हमें परख लेना है कि ये जो क्रोध है वो किस प्रकार का है, फिर रिपेंट पश्चाताप, और फिर अपने आप को इससे बचा कर रखना या अपने आप के ऊपर निग्रह जमा कर रखना, और अंततः इसे भगवान की सेवा में हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इस इमोशन को। ये भगवान ने पूरी भगवत गीता में हालांकि क्रोध के बारे में बताया, फिर अर्जुन को कहा चलो उठो अब दुर्योधन के ऊपर बाण चलाओ। लेकिन यदि हम देखें सबसे पहले जो परखना है रिकग्निशन, उसमें ये दो प्रकार के क्रोध बताए गए। एक होता है कि किसी स्थिति को लेकर, इशू को लेकर हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है, लेकिन अक्सर वो क्रोध कलह में कब परिणित होता है, जब हम इशू को छोड़कर उस व्यक्ति को कड़गरे में ले लेते हैं, है ना। When our anger is person based, then all the problems they flare up. But if we are only dealing with the issue, जैसे जीसस क्राइस्ट उन्होंने क्या कहा, kill the sin, not the sinner. तो यदि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में भी जब हम परिवार में रह रहे हैं, रिश्ते नाते निभा रहे हैं, तो ऐसे बहुत सी स्थितियां होंगी जहां पर गलतियां हमसे भी हुई हैं, होंगी, और गलतियां अगले व्यक्ति से भी हुई हैं और होंगी। इंग्लिश में कहते हैं ना, डोंट थ्रो द बेबी अलोंग विद द बाथ वाटर। इसका मतलब यह है कि बच्चे को टब में आप नहला रहे हो और फिर वो जो साबुन का गंदा पानी है, खाली उस पानी को फेंको, बच्चों को नहीं फेंको उसके साथ। मान लो आप बच्चे को नहलाए साबुन के पानी से, तो वो टब में से साबुन का पानी खाली करो, बालकनी से सब कुछ बाहर फेंक दिया। तो इसलिए इश्यू बेस्ड जो एंगर होता है, यहां पर महाभारत के युद्ध में अर्जुन जो क्रोध व्यक्त कर रहे थे वो कैसा क्रोध था? इश्यू बेस्ड था, कि दुर्योधन वो हालांकि भगवान का अंश है लेकिन अभी उसने अपने उस स्थिति को भूलकर वो इतने लोभ में गिरा हुआ है। तो जैसे एक डॉक्टर वो केवल वो जो बीमारी है उसको निकालता, मरीज को नहीं खत्म करता। ये नहीं कि मरीज भी खत्म ना रहेगा, मरीज ना रहेगा बीमारी, और क्या देखो, नहीं वो उसका उत्तरदायित्व तो उसकी जिम्मेदारी क्या है कि केवल बीमारी को निकाले। तो वैसे ही ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ये परख लें कि जब भी क्रोध अवस्था में हम आते हैं Is it a person-based anger or issue-based anger? And the problem always goes compounding when the anger is personally taken rather than just the issue. और इसलिए अर्जुन को जो भगवान ने भगवत गीता सुनाई और अर्जुन को याद दिलाया कि अर्जुन तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है और यदि तुम इस जिम्मेदारी को नहीं निभाओगे तो इस पूरी पृथ्वी पर तुम्हारे इस जिम्मेदारी को न निभाने की वजह से जो अधर्म फैलेगा. तो अर्जुन ये सब कुछ सुनने के पश्चात श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि अर्जुन ने कौन से इमोशन को भगवान की सेवा में लगाया, क्रोध को. हनुमान जी का भी उदाहरण प्रभुपाद देते हैं दैट हनुमान जी ही एम्प्लॉयड हिज एंगर इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड राम, क्योंकि वो भगवान की सेवा में इस्तेमाल किया तो वो शुद्ध हुआ, दैट वॉज स्पिरिचुअलाइज्ड एंड प्यूरिफाइड. तो जितने भी हमारे अंदर ये सारे भावनाएं हैं, हालांकि अभी वो अनर्थ का काम कर रही होंगी, लेकिन वो अनर्थ अर्थ में परिणित हो सकता है जब हम भगवान के साथ उसे जोड़ दें. तो यही आज के श्लोक का विश्लेषण. लेकिन आज हमने केवल क्रोध लिया है और भाग दो में अगले बुधवार को हम लेंगे कि वो क्रोध किस प्रकार से जीव को सम्मोह में डालता है, उसकी स्मृति विभ्रम हो जाती है और फिर बुद्धिनाश और अंततः फिर वो प्रणश्यति. तो इस चक्र को, ये जो विशेष साइकिल है, इसको कैसे काटना है ये भगवान इन दो श्लोकों के द्वारा बता रहे हैं. हालांकि हमारे लिए वही भगवान ने ये बता दिया है कि चाहे जितने भी हमारे अनर्थ हों, जितने भी ये कुधारणाएं भावनाएं हों, इन सब को शुद्ध करने के लिए हमें कृष्ण भावनामृत बनना है इस हरे कृष्ण महामंत्र के जप के द्वारा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा.
हिज ग्रेस शिक्षा अष्टकम प्रभु की जय. हरे कृष्णा.